अब मैं अध्याय चार, जिसका शीर्षक है समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन, उसका रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। इस अध्याय के अंतर्गत हम निम्न रूप से समाजीकरण का स्वरूप, समाजीकरण के जैविक आधार, समाजीकरण के उद्देश्य, समाजीकरण की विधियाँ, समाजीकरण के स्तर, समाजीकरण के अभिकरण, समाजीकरण के सिद्धांत तथा समाजीकरण से संबंधित कुछ अवधारणाओं पर विचार करेंगे। समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। प्रत्येक शिशु जन्म के समय एक संगठित शारीरिक ढांचा यानी ऑर्गेनिक बॉडी मात्र होता है। वह अस्थि मांस का ढांचा न तो अपने बारे में और न ही समाज के बारे में कुछ जानता है और न ही किसी सामाजिक गतिविधि में भाग लेने की स्थिति में होता है। समाज में उसे किस प्रकार का व्यवहार चाहिए, समाज के क्या नियम कानून हैं, समाज के क्या मूल्य हैं, इन तमाम बातों की उसे कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, परिवार के सदस्य विशेषकर माँ उसे विभिन्न चीज़ों की जानकारी देने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे परिवार की गतिविधियों में उसकी भागीदारी शुरू हो जाती है। बालक दैनिक जीवन में अपने माता पिता, सगे संबंधियों, पड़ोसियों एवं अपने मित्रों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज के बारे में सीखने लगता है। इसी सीखने की प्रक्रिया का नाम मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र में समाजीकरण है। समाजीकरण का स्वरूप। समाजीकरण की प्रक्रिया को जॉनसन ने काफी सरल ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि समाजीकरण वह प्रशिक्षण है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाता है। सोशलाइजेशन इज लर्निंग that enables the learner to perform social roles. H.M. Johnson, 1983. यहाँ जॉनसन ने यह भी कहा है कि हर एक चीज सीखना समाजीकरण नहीं है। सीखने की उसी प्रक्रिया को उन्होंने समाजीकरण कहा है जिसकी मदद से व्यक्ति की भागीदारी समाज में संभव होती है। सीखने का उद्देश्य सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेना एवं सामाजिक नियमों एवं मूल्यों के अनुसार अनुसरण करना होता है। समाज को विध्वंस करने के बारे में सीखना समाजीकरण कतई नहीं है। समाजीकरण के अंतर्गत व्यक्ति समाज की संस्कृति के बारे में सीखता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने की उससे अपेक्षा करता है। इसी माध्यम से समाज में संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है और इस प्रकार समाज एवं संस्कृति एक जीवंत व्यवस्था की तरह चलती रहती है। समाजीकरण के अभाव में व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में क्रियाशील नहीं रह सकता है। समाज के सदस्यों के बीच वह ठीक से अंतःकरण की प्रक्रिया नहीं कर सकता है। समाज में रहकर भी वह बहुत अकेला महसूस करेगा। किसी व्यक्ति को अपने माता पिता, दोस्त, सगे संबंधियों, दुकानदारों, शिक्षकों, सहकर्मियों इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान समाजीकरण द्वारा ही संभव होता है। इसी तथ्य को किम्बल यंग ने मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में लिखा है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। दूसरी तरफ प्रसिद्ध फ्रेंच समाजशास्त्री एमिल डर्कहाइम ने समाजीकरण को बहुत ही सीमित अर्थ में देखने का प्रयास किया है। उनका कहना था कि बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देना ही समाजीकरण है, लेकिन वर्तमान समाजशास्त्र में समाजीकरण को इतने सीमित अर्थ में परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया जाता है। कुछ लोगों ने समाजीकरण एवं शिक्षा, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, इन दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग करने का प्रयास किया है, लेकिन यह सही नहीं है। शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जन की प्रक्रियाएं आती हैं। महाविद्यालय में रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र पढ़ना ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया है, यह कोई समाजीकरण नहीं है। समाजीकरण का संबंध विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने से नहीं है। समाजीकरण का संबंध मात्र वैसे ज्ञान से है जिसकी मदद से व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी संस्कृति के बारे में सीखता है, किस परिस्थिति में किस व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए या किन सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों का कैसा निर्वाह करना चाहिए, इसकी जानकारी ही समाजीकरण है। इस संबंध में लेस्ली एवं उनके सहयोगी ने स्पष्ट लिखा है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल लर्न हाउ टू कोप विद द सोशल ऑर्डर। संक्षेप में, समाजीकरण शिक्षा है, लेकिन तमाम प्रकार की शिक्षा समाजीकरण नहीं है। समाजीकरण व्यापक शिक्षा का एक छोटा सा अंश है। लेस्ली ने आगे यह भी कहा है कि समाजीकरण को कभी कभी व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्रक्रिया के साथ भी जोड़ दिया जाता है, जो गलत है। दोनों दो प्रकार की अवधारणा है। व्यक्तित्व का संबंध समाजशास्त्र से कम और मनोविज्ञान से ज़्यादा है। समाजशास्त्री इस संबंध में सिर्फ इतना ही अध्ययन करते हैं कि किसी व्यक्ति में सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सामाजिक आत्मन यानी सोशल सेल्फ का विकास कैसे होता है। व्यक्तित्व के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पहलू हैं जिनसे समाजशास्त्रियों का कोई संबंध नहीं है। समाजीकरण व्यक्तित्व के विकास का एक छोटा सा हिस्सा है, अर्थात व्यक्तित्व विकास अपेक्षाकृत एक बृहत्तर प्रक्रिया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया का नाम है, पर कोई बालक अपनी संस्कृति को क्यों और कैसे सीखता है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। J.H. फिक्टर ने बताया है कि सीखने की प्रक्रिया में तीन उप प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला क, नकल, इमिटेशन। बच्चों में नकल करने की अच्छी क्षमता होती है। जिस चीज से उनका मनोरंजन होता है या जो उन्हें रुचिकर लगता है उसका वे नकल करने का प्रयास करते हैं। नकल की आदत सिर्फ बच्चों में ही नहीं पाई जाती बल्कि नवयुवकों में भी पाई जाती है। वे भी वैसी चीज़ों का नकल करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। प्रत्यक्ष रूप से नकल का उद्देश्य सीखना नहीं होता, पर नकल के सहारे हम बहुत कुछ स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। दूसरा ख, सुझाव, सजेशन। जब कभी भी किसी व्यक्ति को कुछ गलती नजर आती है तो वह अपने से छोटे को सुझाव देने का प्रयास करता है। माता पिता और सगे संबंधी छोटे बच्चे को हमेशा अच्छा आचरण करने की सलाह देते हैं। बच्चे के सामने जब कोई नई परेशानी आती है तो वह इस परिस्थिति में अपने दोस्तों से भी सलाह मशवरा करता रहता है। इस प्रकार सुझाव से भी हमें अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता है। तीसरा ग, प्रतियोगिता, कंपटीशन। मनुष्य स्वभाव से ही प्रतियोगी होता है। हर एक व्यक्ति की यह कोशिश होती है कि उसकी पहचान एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हो, इसलिए वह यह कोशिश करता है कि वह दूसरों से अच्छा काम कर दिखाए। प्रतियोगिता की भावना सबसे स्पष्ट रूप में स्कूलों एवं खेल के मैदानों में देखने को मिलती है। इस भावना के कारण उसे कुछ न कुछ सीखना ही पड़ता है। प्रतियोगिता सीखने के उद्देश्य से नहीं होती है, बल्कि सीखना प्रतियोगिता का एक नतीजा है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि समाजीकरण स्थापित सामाजिक मूल्यों एवं मानदंडों का आत्मसातकरण यानी इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज की प्रक्रिया है। मेटा स्पेंसर एवं अन्य समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण को इसी रूप में देखने का प्रयास किया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज को निरंतरता प्रदान करती है। समाजीकरण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। समाजीकरण की प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए उनकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा आवश्यक है, जो इस प्रकार है। पहला, सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। व्यक्ति जो समाज के सदस्य के रूप में समाज के बारे में जो कुछ सीखता है, उसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र के क्षेत्र में समाजीकरण कहा जाता है। पर प्रत्येक प्रकार के सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण नहीं कहा जा सकता है। परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, राज्य के नियम कानूनों का पालन करना, दूसरों के साथ सहयोग करना इत्यादि चीज़ों के बारे में सीखना समाजीकरण है। लेकिन पॉकेट मारी करने का हुनर हासिल करना या गाली या अपशब्द सीखना समाजीकरण नहीं है। दूसरी विशेषता, आजीवन प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। समाजीकरण की प्रक्रिया शैशव काल से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलती है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। मनुष्य समाज के बारे में कुछ न कुछ हमेशा ही सीखता रहता है, पर यह प्रक्रिया समान रूप से हमेशा नहीं चलती है। वृद्धावस्था की तुलना में बाल्यकाल में लोग कुछ ज़्यादा ही सीखते हैं। स्वीडिश मनोवैज्ञानिक पियाजे का कहना है कि बच्चे कुछ अधिक जल्दी और प्रभावशाली ढंग से सीखने की क्षमता रखते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चों में नकल करने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। बच्चे प्रारंभ में दूसरों पर निर्भर रहते हैं, पर इस निर्भरता की स्थिति से आज़ाद होने के लिए वह किसी चीज़ को जल्दी सीखने का प्रयास करते हैं। तीसरी विशेषता, यह संस्कृति को एक आत्मसात करने की प्रक्रिया है, इंटरनलाइजेशन ऑफ कल्चर। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपनी संस्कृति के बारे में सीखते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। चूंकि संस्कृति का स्वरूप अमूर्त होता है, इसलिए इसे सीखकर ही हासिल किया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि समाजीकरण के द्वारा जो सीखा जाता है वही संस्कृति है। यह भी उल्लेखनीय है कि मात्र अपनी संस्कृति का ज्ञान रखना ही समाजीकरण नहीं है, बल्कि उसके अनुरूप आचरण करना भी जरूरी है। इसीलिए तो कहा जाता है कि समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्मन का विकास होता है। चौथी विशेषता, समाजीकरण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। किसी परिस्थिति में किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें समाजीकरण के द्वारा ही होता है। मनुष्य का व्यवहार सिर्फ जैविक स्तर पर ही नहीं समझा जाना चाहिए। मनुष्यों के व्यवहार का सामाजिक पहलू जैविक पहलू से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्यों का व्यवहार जो एक दूसरे के संदर्भ में होता है, वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में होता है। समाजीकरण व्यक्ति के प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल क्षमता को बढ़ाता है। यह समाजीकरण ही है जिसके द्वारा कोई शिशु एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है। संक्षेप में हम यहाँ यही कहना चाहते हैं कि समाजीकरण व्यक्तित्व, एक बार फिर से सुनिए, संक्षेप में हम यहाँ यही कहना चाहते हैं कि समाजीकरण व्यक्तियों को विभिन्न परिस्थितियों में स्वीकृत आचरण का ज्ञान देता है, जिससे हम समाज के तमाम गतिविधियों में समाज के अन्य सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं। अब हम समाजीकरण के जैविक आधार पर चर्चा करेंगे, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सोशलाइजेशन। कई समाजशास्त्रियों ने यह प्रश्न खड़ा किया है कि मनुष्यों की वह कौन सी जैविक विशेषताएं हैं जिसके कारण उसका समाजीकरण होता है। यह प्रश्न इसलिए खड़ा होता है कि विश्व में मनुष्य मात्र ही एक ऐसा जैविक प्राणी है जिसका समाजीकरण होता है। मनुष्यों की तरह अन्य जीव भी जैविक प्राणी हैं, पर उसका समाजीकरण नहीं होता है। जिन विद्वानों ने इस विषय पर विचार किया है, उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मनुष्य में कुछ विशिष्ट जैविक गुण अवश्य हैं जिनके कारण उसका समाजीकरण होता है। यहाँ पर हम ब्रून एवं सेल्सनिक द्वारा प्रस्तुत उन जैविक विशेषताओं की चर्चा करेंगे जिनके कारण मनुष्य का समाजीकरण संभव होता है। पहला, सहज प्रवृत्तियों की कमी, एब्सेंस ऑफ इंस्टिंक्ट्स। सहज प्रवृत्तियां एक प्रकार का जटिल व्यवहार है जो जैविक रूप से निर्धारित होता है। जानवरों एवं पक्षियों की यह एक प्रमुख विशेषता है। जैसे पक्षियों के अंतर्गत घोंसला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, पक्षियों में यह गुण जैविक आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्वतः हस्तांतरित होता रहता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने की प्रक्रिया में बाधक के रूप में काम करती है। मनुष्य इसलिए कुछ सीख पाता है क्योंकि उसमें इस ढंग की सहज प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। मनुष्य की विशेषता जैविक प्रेरणा, बायोलॉजिकल ड्राइव है। प्रेरणा व्यक्तियों को कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यह जैविक स्तर पर निर्धारित होने वाले व्यवहारों का प्रतिमान नहीं है। दूसरा, अंतःक्रियात्मक आवश्यकताएं, इंटरेक्शनल नीड्स। मनुष्यों की यह विशेषता है कि वह दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है। कोई भी व्यक्ति अकेले स्वतंत्र ढंग से जीना पसंद नहीं करता। जिस प्रकार जानवर अलग होकर जीवित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवित रहना नहीं चाहता है। मनुष्यों के अंतर्गत वैसे जैविक गुण हैं जो उसे एक दूसरे पर आश्रित कर देते हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण वह सीखता है। प्रयोग पर आधारित ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि जिन बच्चों को समाज से दूर जंगलों में छोड़ दिया गया था या जानवरों के संसर्ग में रखा गया था, वे जानवरों की तरह ही व्यवहार करने लगे। चूंकि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर समाजीकरण के माध्यम से अपने समाज एवं संस्कृति के बारे में सीखता है। तीसरी विशेषता, बाल्यावस्था की निर्भरता, चाइल्डहुड डिपेंडेंस। विभिन्न प्राणियों की तुलना में शिशु अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर शारीरिक व भौतिक रूप से ज्यादा लंबे समय तक निर्भर रहता है। इसी निर्भरता के कारण बालकों एवं अभिभावकों के बीच एक संवेगात्मक संबंध कायम हो जाता है, जिससे बच्चों का व्यवहार आसानी से निर्धारित एवं संचालित होता रहता है। इस संवेगात्मक संबंध के कारण बच्चों का समाजीकरण काफी आसानी से हो जाता है। चौथी विशेषता, सीखने की क्षमता, कैपेसिटी टू लर्न। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसे शिक्षित किया जा सकता है। उसके अंतर्गत इतनी अधिक जैविक क्षमता होती है कि उसकी तुलना समस्त विश्व के किसी भी जीवधारी से नहीं की जा सकती। मनुष्य की एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि वह एक लंबे समय तक किसी चीज को सीखता रह सकता है। मनुष्य के अंतर्गत पाई जाने वाली बुद्धि यानी इंटेलिजेंस उसकी विशिष्ट जैविक विरासत है। सीखने में बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मनुष्यों में सीखी हुई चीजों को सुरक्षित रखने की भी क्षमता पाई जाती है। पांचवी विशेषता, भाषा यानी लैंग्वेज। मनुष्य की जैविक क्षमता के अंतर्गत भाषा का भी ज्ञान आता है। बहुत सारे जानवरों में भी कुछ न कुछ बुद्धि अवश्य पाई जाती है, पर उनमें भाषा का अभाव होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह किसी भी भाषा को सीख सकता है और उसके माध्यम से अपनी बातों को एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपने भावों एवं विचारों को पहुंचा सकता है। किसी भी चीज का ठीक से सीखना भाषा के अभाव में ही संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य में भाषा जैसी चीज सीखने की जैविक क्षमता होती है, इसलिए उसका समाजीकरण भी संभव हो पाता है।